नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों के प्रयास से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिल रही है। बांका, नवादा और सीवान में परमाणु बिजली घर बनाने के लिए प्रारंभिक सर्वे का काम पूरा हुआ, केंद्र सरकार को भेजी जाएगी रिपोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने IRCTC घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने से किया इनकार। और प्रदेश के कई भागों में आज भी आस्था और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान राष्ट्र निर्माण में सशक्त भागीदार हैं और उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिल रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं।
हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी है। उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार पर्यावरणीय हितों को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ खेती के लिए काम कर रही है। उन्होंने युवाओं से कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आगे आने का आह्वान किया है।
हम खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, वाटर मैनेजमेंट, मैं तो लगातार कहता रहा हूँ, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी क्षेत्रों में हमारे युवा नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और पशुधन को बढ़ाने के लिए पशु नस्ल संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि 246 विभिन्न नस्लों की पहचान की गई है जिन्हें संरक्षित किया जाना है।
मैं ICR की पूरी टीम को, NDJR की पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये अभियान प्रारंभ किया कि हमारी इन अलग अलग नस्लों को पहचान कर उनका रजिस्ट्रेशन करें और अब तक 246 ऐसी अलग अलग नस्लें पहचानी गई है। आज के दिन 16 ब्रीड का रजिस्ट्रेशन किया गया है और 6 का कंजर्वेशन। कुल मिला के अभी हमारी 246 ऐसी नस्लें अलग अलग हो गई। मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि है।
प्रदेश में परमाणु बिजली घर बनाने के लिए प्रारंभिक सर्वे का काम पूरा हो गया है। बांका, नवादा और सीवान में परमाणु बिजली घर बनाने के लिए पिछले साल सर्वे का काम शुरू हुआ था। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि परमाणु बिजली घर बनाने के लिए सर्वे रिपोर्ट मिल गई है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के सभी पहलुओं पर अध्ययन किया जा रहा है। श्री यादव ने कहा कि केंद्र सरकार को इस रिपोर्ट की जानकारी दी जा रही है। मंत्री ने कहा कि बिजली घर बनाने को लेकर जल्द ही ठोस निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा कल से पश्चिम चंपारण जिले से शुरू होगी। पहले चरण में यह यात्रा 16 से 24 जनवरी के बीच होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में लोगों से संवाद करेंगे। श्री कुमार अपनी प्रगति यात्रा से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी लेंगे। कैबिनेट विभाग ने समृद्धि यात्रा को लेकर सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं। यह मुख्यमंत्री की 16वीं यात्रा हुई। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि साइबर अपराध इकाई और विशेष शाखा के लिए पटना में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नए भवन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण पर 51,19,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। श्री चौधरी ने कहा कि यह भवन बिहार पुलिस की तकनीकी क्षमता को नई दिशा देगा, साथ ही साइबर अपराध के बढ़ते मामलों की जांच और उस पर नियंत्रण प्रक्रिया में तेजी आएगी। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जमीन से जुड़े मामलों में समय पर और एक समान न्याय मिलना चाहिए। श्री सिन्हा ने पटना में कहा कि राजस्व न्यायालयों में आम नागरिक न्याय मिलने की उम्मीद से आते हैं। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के दौरान यह महसूस किया गया कि बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था से न्याय प्रक्रिया को ज्यादा सुगम और सरल बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विभाग इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से जुड़े IRCTC घोटाला मामले में चल रहे मुकदमों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि मुकदमा जारी रहेगा, लेकिन गवाहों से जिरह अगले सप्ताह तक की जा सकती है। तब तक अदालत द्वारा पिता पुत्र द्वारा आरोपों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। लालू प्रसाद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान मुकदमे पर रोक लगाने के संबंध में सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया गया था। बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं मुख्य परीक्षा 25 से 30 अप्रैल के बीच आयोजित किए जाने की संभावना है। आयोग ने परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की ये संभावित तिथियां हैं और विस्तृत कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से 1998 पदों के लिए बहाली होनी है। 18 नवंबर को हुई प्रारंभिक परीक्षा में 13,968 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में 3,16,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। राज्य में UPSC, BPSC समेत अन्य प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षाओं में सफल रहे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 8,420 अभ्यर्थियों को सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ मिला है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत अब तक 43 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के कई भागों में आज भी आस्था और पारंपरिक उल्लास के साथ मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालु गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान कर रहे हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि श्रद्धालु पवित्र स्नान के बाद पूजा पाठ कर दान पुण्य भी कर रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मकर संक्रांति का त्यौहार कल मनाया गया। सिवान में मकर संक्रांति के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पारंपरिक लोक गीतों का भी प्रस्तुतीकरण हुआ। रोहतास जिले के नोखा प्रखंड अंतर्गत मोजराड़ मेले का आयोजन किया गया। विशाल पोखड़ा के पेड़ पर आयोजित मेले में परंपरा और संस्कृति का अद्भुत मेल देखने को मिला। वहीं नालंदा के राजगीर में युद्ध हॉस्टल मैदान में 7 दिवसीय ऐतिहासिक मकर मेले की शुरुआत हुई है। इसमें कई प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के बाद अधिकतम तापमान में क्रमिक रूप से बढ़ोतरी होगी। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में अनेक स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट भी जारी किया है।
दिनांक 15 जनवरी राज्य के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज जिलों के एक या दो स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
राजधानी पटना में 11 जगहों पर आग से बचाव के लिए नए हाइड्रेंट लगाए जाएंगे। पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से शहर के प्रमुख स्थानों पर इसे स्थापित किया जाएगा। पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू ने कहा कि फायर हाइड्रेंट लगने से मौके पर अग्निशमन से जुड़े वाहनों को पर्याप्त पानी की सुविधा मिलेगी। आपदा प्रबंधन विभाग ने इसके लिए 1,23,00,000 रुपए की राशि उपलब्ध करा दी है। गया एयरपोर्ट से मुंबई के लिए 29 मार्च से सीधी उड़ानें शुरू होंगी। फिलहाल यह उड़ान समर सीजन के तहत संचालित की जाएंगी। मुंबई से उड़ान भरकर विमान दोपहर बाद 3:20 पर गया एयरपोर्ट पहुंचेगा और 3:50 पर गया से यात्रियों को लेकर मुंबई के लिए रवाना होगा। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक लाभ देने वाली कोई योजना शुरू की है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया है कि यह वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बनाया गया है। विदेश मंत्रालय ने ईरान में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति के मद्देनजर भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी है। इससे पहले भी मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से पश्चिम एशियाई देश की गैर जरूरी यात्रा से बचने का आग्रह किया था। इस बीच तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भी भारतीय नागरिकों को वाणिज्यिक उड़ानों सहित उपलब्ध परिवहन साधनों का उपयोग कर ईरान छोड़ने की सलाह दी है। अब खेल की खबरें। नई दिल्ली में खेली जा रही 39वीं सब जूनियर कोरोगी ताइक्वांडो चैंपियनशिप के बालिका 38 किलोग्राम भार वर्ग में राज्य की पलक यादव ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। बेगूसराय जिले के तेगड़ा निवासी शिव कुमार का चयन भारतीय हैंडबॉल पुरुष टीम में हुआ है। शिव कुमार आज से कुवैत में होने वाली 22वीं एशियाई हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेंगे। मगध विश्वविद्यालय बोधगया की टीम ने ओडिशा में खेले जा रहे ईस्ट जोन अंतर विश्वविद्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट में कलिंग विश्वविद्यालय भुवनेश्वर को 44 रनों से पराजित कर दिया। नालंदा के हनौत में 25 तथा 50 मीटर इंडोर शूटिंग रेंज के निर्माण के लिए राशि की स्वीकृति मिल गई है। यह जानकारी जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने दी है। शिवहर के गांधीनगर भवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ झा की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्यालय की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने पीजी मेडिकल की 18,000 सीटें खाली रह जाने पर मंत्रालय के निर्णय को शीर्षक बनाते हुए लिखा है, 0% पर भी मेडिकल पीजी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गृह विभाग का प्रस्ताव, अब इंस्पेक्टर की जगह दारोगा भी कर सकेंगे साइबर कांडों की जांच। दैनिक भास्कर लिखता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, 62,436 युवा नहीं दे रहे मूलधन, इन पर केस होगा। प्रभात खबर की सुर्खी है, ईरान में बिगड़े हालात, भारत ने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने को कहा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों के प्रयास से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिल रही है। बांका, नवादा और सीवान में परमाणु बिजली घर बनाने के लिए प्रारंभिक सर्वे का काम पूरा हुआ, केंद्र सरकार को भेजी जाएगी रिपोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने IRCTC घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने से किया इनकार। और प्रदेश के कई भागों में आज भी आस्था और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।